आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश मोहब्बतें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और आइए आज सुनते हैं सहबा जाफरी की लिखी कहानी ये इश्क नहीं आसान। भाभी एक गिलास पानी मिलेगा क्या? यूनिवर्सिटी से आ किताबें पटक मैंने मोनिका भाभी से लाड लड़ाए। लो जी तुम क्या हल जोत कर आ रही हो, खुद उठ कर लो। वो बिना नहाए अपनी रसोई में प्रवेश नहीं करती थी और जब उन्हें किचन में नहीं जाना होता था हमारे लाड प्यार के सारे हथियार फिजूल जाते थे। आप क्या जाने हमारे संघर्ष, आपकी तरह परी कथाओं वाली जिंदगी नहीं है हमारी, मैं रुआंसी होकर बोली। अच्छा, वो क्रोशिए की शॉल का बुनना उठा मेरे पास झूले में ही पसर गई। तुम्हें किसने कहा? एक धीमी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। अतीत में चहलकदमी करती उनकी बड़ी बड़ी आंखें नींद की झील से पुराने ख्वाबों के मोती चुनने लगीं। मेरा कहा एक एक शब्द सही था। प्रोफेसर राणा की उनके लिए दीवानगी क्या किसी से छिपी थी? भाभी को छींक भी आ जाए तो वो सारा संसार सर पर उठा लेते थे। पिछले दिनों उनकी किडनी में स्टोन क्या हुए, एलोपैथी होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के बाद बचने वाले समय को वो गूगलोपैथी में लगा उनके लिए नित नए नए इलाज खोजने लगे थे। बेचारी भाभी, उन्हें डर था कि कहीं वो अच्छी ना हुई तो उनके पति जरूर हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे। साहित्य के प्रोफेसर होने के नाते वो ऊपर से भले कठोर बन लें, अंदर से बड़े कोमल मानव थे। एक अच्छे गाइड, अच्छे गायक, अच्छे प्रोफेसर और उन सब से बढ़कर एक अच्छे इंसान। हम यदा कदा कोई शैक्षिक भूल कर भी दें और उनके द्वारा डांट भी दिए जाएं, तो उनकी प्राण प्रिया हमारी आदरणीय भाभी हमें अपनी स्नेह छाया में समेट लिया करती थी। इसी से वो हमें सर से भी ज्यादा प्यारी लगती थी। भाभी की सुंदर चंचल आंखें गंभीर होने लगी और खौफ की लर्जिश से उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। क्या हुआ? मुझे करंट सा लगा। और तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान था? मेरे चेहरे के भौचक के भावों से अनभिज्ञ वो जैसे अतीत की पुस्तक के फड़फड़ाते पृष्ठों पर दृष्टि जमाए हुए थीं। सधी सीधी और संयत 16वें साल की चंचल अटखेलियों के चुलबुले सपनों के साथ आए थे ये मेरी जिंदगी में। गांव में नया नया और पहला पहला कॉलेज खुला था और ये उसके पहले पहले प्राध्यापक, ऊर्जा और आत्मीयता से भरपूर, आकर्षक छवि, मोहक मुस्कान और सबसे अलग अदाएं और सोहने तो इतने थे कि गांव भर की कितनी ही रमणियां इनके प्रेम में नसें काटने और चूड़ियां पीसकर खाने को तैयार थीं। गिटार पर इनका एक गाना सुनने के लिए वो रात रात भर प्रतीक्षा कर सकती थी, पर ये अपने पद की गरिमा और लड़कियों का कोमल मन खूब समझते थे। बड़े स्नेह से सबसे क्षमा मांग किनारा कर लेते थे। मैं वयस में इनसे इतनी छोटी कि प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती थी, पर प्रेम का ये पारितोष जैसे विधाता ने मेरे ही लिए रखा था। पिताजी की गिनती गांव के प्रतिष्ठित और प्रधान लोगों में होती थी, इसी से इनका घर में खूब आना जाना था। मेरे छोटे भाई बहनों के साथ चंदन पानी से घुले हुए और मेरी माँ से तो इनका जुड़ाव इतना आत्मीय था कि उनकी शहदीली मुस्कान जो हम भाई बहनों को कम ही देखने को मिलती थी, इनके आते ही मेघ मधुलिका सी ही सामने आ जाया करती थी। होते होते कब प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। भाभी ने थोड़ी सांस ली पर मैंने नहीं लेने दी। फिर क्या, फिर वही जो इस मुल्क में प्रेम के साथ होता है। भाभी का मन कड़वाहट से भर गया। शिव को शक्ति से मिलने को भी कई जन्म लेने पड़े थे। पूरी कान्हामयी हो जाने पर भी राधा कृष्ण से नहीं मिल पाई थी। इधर हम हीर रांझा क्या हुए, पूरी दुनिया ने कैदों का रूप धर लिया। हमारी बदनामी के नए नए प्रयास किए जाने लगे, नित नए नए तरीकों से हम पर नजर रखी जाने लगी। माँ पिताजी के लाडले होने के बावजूद भी इनका हमारे घर आना बंद हो गया। मुझसे जिद की गई कि इस रिश्ते को मैं राखी के रिश्ते में बदल दूं। फिर अब की बार मैं सांसें रोके सुन रही थी। फिर वही गांव के प्रधान की लड़की थी, यूं हाथ से कौन जाने देता। रिश्तों की लाइन लगी थी घर के बाहर, जरा कमजोर पड़ती कि कहीं और ब्याह दी जाती। इनके बिना मरना मेरे लिए आसान था, जीना नहीं। सो मीरा की तरह घर के आंगन में रखा कीटनाशी कटोरे में भरा और गटगट पी गई। कहते कहते उनकी आंखें ऐसे पनीली हो गईं मानो मृत्यु का वरण करने पर नहीं प्रेम के प्रतिकार पर रो रही हूं। मैं सहमी सहमी सी इस कथा के अंत के लिए प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, जो हैप्पी एंडिंग ना हो तो तुझे शेक्सपियर की कसम लगे। शेक्सपियर की कसम रंग लाई। डॉक्टरों ने मेहनत मशक्कत कर भाभी को बचा लिया था, पर वो प्रेम से खाली इस जीवन के लिए ईश्वर की बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं थी। एक दिन अचानक भाभी को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर सचमुच मेरे बिना नहीं जी सकती तो आज कॉलेज जाते वक्त बीहड़ों के बीच बने काली मंदिर वाला रास्ता ले लेना, मैं तुम्हें वहीं से लूंगा। उस लिखावट में क्या था वो नहीं जानती, पर उन दो शब्दों ने अचानक ही उन्हें षोडशी सुकुमारी से वीरांगना बना दिया था। जुलाई की घोर बादलों वाली दोपहर, साए साए के स्वर तोड़ती घनघोर घटा, काली मंदिर का बीहड़ों वाला रास्ता, तिस पर लेने आए चेहरों में एक भी उनका परिचित नहीं। बकौल भाभी, एक बार की तो मन हुआ लौट जाऊं, पर लौटना कहां? वापसी के सारे रास्ते तो मैं अपने हाथों से ही बंद करके आई थी। मेरी एक गलती मेरे साथ साथ होने वाले शासकीय सेवारत पति का जीवन भी बर्बाद कर सकती थी। आधे रास्ते में ये मिले, पर वो आधा रास्ता मेरे लिए आधा जन्म था। फिर आर्य समाज मंदिर में चतुष्पदी लेकर हमारा विवाह संपन्न हुआ। इनकी सूझबूझ और गंभीर प्रेम के कारण हम एक दूसरे के हो सके। और क्या, मैंने भाभी को शरारत से छेड़ा, और क्या तुम जैसे नालायकों को पानी पिलाना पड़ रहा है। मुस्कुराकर लाल हुई भाभी अपनी शर्म छिपाती किचन की तरफ भाग चुकी थी, और मैं सोच रही थी, ये इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज के लिए बस इतना ही, अगली कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज़।